जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य स्तोत्र सस्त्री श्रीमदेश दिवाइन ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रवचिस्कोन फाउंडर आचार्य शिव दी होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम नंदे All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता थारूप अध्याय एक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 19 पृष्ठ संख्या 38। मेरे पीछे बोलिए।
सघो सौ धात राष्ट्रण हृदयानी व्यदारय नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलोभ्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राण हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलोभ्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राण हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलोभ्यनुनादयन्।
शब्दार्थ बोलिए। सह उस घोषः शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को व्यदारयत् विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश च भी पृथ्वी पृथ्वी तल को च भी एवं निश्चय ही तुमुलह कोलाहल पूर्ण अभ्यनुन आदयन प्रतिध्वनित करता शब्दायमान करता। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। मेरे साथ बोलिए।
ओम अज्ञान तिमिरां धस्य ज्ञानांजन सलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्लोक फिर से समझेंगे। यहां संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं सघोषो धार्त राष्ट्राणाम। वो संघ ध्वनि कौन सी संघ ध्वनि? भगवान कृष्ण की, अर्जुन की और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और फिर बहुत से नाम बतलाए हैं जो पांडव पक्ष के जो राजा थे, तो उन सब की जो संघ ध्वनि है वो क्या हुआ? उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया, हृदय फट गए उस ध्वनि से। नभस्त पृथ्वीम से तुम लोग भिनुना दिया और आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद के जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भीष्म जी ने शंख बजाया तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। देखिए, जब भीष्म जी ने शंख बजाया और कौरव पक्ष के जो योद्धा थे उन्होंने भी अपने अपने संग भेरी नगाड़े सब बजाए तो क्या हुआ? देखिए श्लोक संख्या 13 है। श्लोक संख्या 13 में देखिए, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह सहसा एक साथ बज उठे, यानी शत्रु पक्ष की सेना कौरों के पक्षी की सेना में वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। सशब्द तुमलो भवत, तो वो तुमल शब्द हुआ इतना ही बताया है कि इतना ही हुआ, तुमल शब्द हुआ, बहुत शब्द काफी तेज हुआ उससे। लेकिन उसका क्या प्रभाव, मतलब पांडव पक्षी की सेना में कोई भय पैदा हुआ ऐसा तो नहीं आया वर्णन। लेकिन यहां पर तो संघ ध्वनि भगवान कृष्ण, अर्जुन और उनके पक्षी के योद्धाओं की जो संघ ध्वनि है वो कैसी हो गई? बहुत भयानक। और कितनी भयानक? धार्त राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र ही कह रहे हैं संजय कि धार्त राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का क्या हो गए? हृदय फट गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हुए हों, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं विजय का कारण क्या है? स्वयं पांडव है और उनका भगवान कृष्ण में विश्वास। भगवान कृष्ण कारण नहीं है, यह कारण क्या है? भगवान के प्रति विश्वास पांडवों का, क्योंकि कृष्ण तो कुछ नहीं करने वाले, कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण तो हाथ में शस्त्र भी नहीं लेंगे, तो फिर विजय प्राप्त होगी कैसे? विश्वास के द्वारा। पांडव जो है जो कृष्ण के प्रति विश्वास रखते हैं उससे विजय प्राप्त होने वाली है कि नहीं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो ये जो है ना इस श्लोक की मुख्य बात जो प्रभुपाद जी बताते हैं, विश्वास। जैसे प्रभुपाद जी उनके पास कोई साधन नहीं था, जब वो विदेश में गए थे तो उनके पास कुछ साधन नहीं था। क्या था? 40 रुपए थे। 40 रुपए क्या होता है? अमेरिका में गए थे जब 40 रुपए लेकर गए थे, 40 रुपए होते क्या है? कुछ नहीं है। और शरीर भी उनका स्वस्थ नहीं था, दिल के 2 दौरे पड़े, कोई सहायक भी उनके साथ में नहीं था, कोई व्यक्ति उनका साथ देने वाला नहीं था, है ना। तो क्या था? कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के पास, लेकिन क्या था? विश्वास। क्या विश्वास? कि भगवान चैतन्य की भविष्यवाणी है। क्या? पृथ्वी दे अच्छे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। पूरी पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। तो उनका विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु की अगर इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में नगर आदि ग्राम में सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा तो होगा। और मैं क्या हूं? मैं तो केवल उनके हाथ का एक खिलौना हूं। प्रभुपाद ने यही समझा कि मैं उनके हाथ का एक यंत्र हूं, निमित्त। मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं, बाकी तो सब कुछ उनको ही करना है। फिर कब प्रभुपाद ने जो कविता लिखी थी तो उन्होंने यही लिखा है कि प्रभु ना चाहो ना चाहो ना चाहो, कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप जैसे नाचाओगे वैसे ही मैं नाचूंगा, क्योंकि मेरे बस का नहीं है कि ये कार्य करूं। भारत में उनका प्रचार सफल नहीं हुआ प्रभुपाद जी का, और ये विदेशी लोग तो जो है ना और ज्यादा दूर हैं, घोर रजोगुण तमोगुण में भरे हुए हैं। तो यहां मैं क्या कर पाऊंगा? जब भारत में ही सफल नहीं हुआ प्रभुपाद का कार्य, तो यहां विदेश में क्या सफल होगा? यहां तो कोई उनको जानता नहीं और ना वे किसी को जानते हैं। तो केवल एक विश्वास था कि भगवान अगर चाहें तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, और भगवान ना चाहें तो संभव कार्य भी असंभव हो जाएगा। तो ये जो ना विश्वास है। अब इस श्लोक में जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों की स्थिति बतला रहे हैं। हमें स्मरण होना चाहिए कि प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ठीक है ना। तो संजय यहां पर बतला रहे हैं कि पूर्व के 3 श्लोकों में वर्णित पांडव पक्ष के योद्धाओं के संघों की सम्मिलित ध्वनि से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। हाँ, अब पिछले 3 श्लोकों में वर्णित योद्धा, अब देखिए कितने नाम है इसमें। एक तो है राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, एक है। दूसरे नकुल, तीसरे सहदेव, और चौथे काशीराज, और पांचवें शिखंडी, छठवें धृष्टद्युम्न, सातवें विराट, आठवें सात्यकी, और नवें द्रुपद, और 5 हैं द्रौपदी के पुत्र। 9 और 5 14 हो गए, और फिर सौभद्र यानी अभिमन्यु, कितने हैं? 15 हो गए। तो 15 योद्धाओं का जिक्र हुआ है 3 श्लोकों में, कि इन्होंने पृथक पृथक संघ बजाए, है ना। तो पांडव पक्ष की योद्धाओं के संघों की सम्मिलित ध्वनि से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि भगवान ही सभी के हृदयों में स्थित होकर भय अथवा निर्भयता उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, हृदय क्यों विदीर्ण हो गए? बाहर से तो संघ की ध्वनि थी और अंदर भगवान भी तो भय पैदा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वो जो भय है अंदर से भी पैदा हुआ और बाहर से भी, है कि नहीं? जो भक्त है वो निर्भय होता है क्योंकि भगवान अंदर से अभय पैदा करते हैं, तो बाहर कितना भी भय हो जो भक्त है वो भयभीत नहीं होता है। लेकिन जो अभक्त है वो जरा जरा सी बात में भी भयभीत होता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में भय पैदा करते हैं उसके, है ना। भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करते हैं और अभक्तों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, आ लगा है। अगर भक्त है यानी आने लगा तो फिर अभय यहां पर आ लगता है। ठीक है ना, अगर भक्त है तो अभय, और अभक्त आ पहले लग गया भक्त में तो फिर भय, फिर वहां आ नहीं लगेगा। अभक्त के हृदय में भय और भक्त के हृदय में अभय भगवान हृदय में उत्पन्न करते हैं, हृदय में। चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्र श्री कृष्ण के भक्त नहीं है इसलिए उनके हृदयों में पांडव सेना की संघ ध्वनि से भय उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जो व्यक्ति भक्तों के प्रति जितना अधिक अपराध करता है उसके हृदय में भय की मात्रा भी उतनी अधिक बढ़ती जाती है। तो भगवान हृदय में है, है ना। तो वे नोट करते हैं, हृदय में बैठे हुए भगवान नोट करते हैं कि कितना मेरे भक्तों का अपराध कर रहा है, है ना। तो उसी प्रकार से भय पैदा करते रहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के प्रति घोर अपराध किए हैं इसलिए श्री कृष्ण उनके हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। अर्थात मैं सभी के हृदय में स्थित होकर स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न करता हूं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण ऐसी स्मृति उत्पन्न करते हैं कि वे समझ सकते हैं कि वे यह शरीर नहीं है, स्मृति। तो भक्त को स्मृति देते हैं भगवान, नहीं तो हर कोई सुनता रहता है हम शरीर नहीं है, है ना, अगला जन्म होता है, तो ये बातें जो है ना आम भाषा में ये चलती रहती हैं। लेकिन स्मृति जो भक्त है उसको स्मृति रहती है इन बातों की, लेकिन जो भक्त नहीं है वो भूल जाता है, अपने को फिर शरीर समझता है, है ना। आगे इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में ऐसा ज्ञान उत्पन्न करते हैं कि वे समझ सकते हैं कि वे श्री कृष्ण के नित्य दास हैं तथा वे सदा श्री कृष्ण के नित्य दास ही रहेंगे। इस ज्ञान से उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब भी अभक्तों के हृदय में श्री कृष्ण विस्मृति उत्पन्न करते हैं जिसके कारण वे अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, इस प्रकार शरीर में आसक्त होने के कारण उनका मृत्यु का भय बढ़ता जाता है। आगे, श्री प्रभुपाद को अभय चरण कहा जाता था, इसका अर्थ है, प्रभुपाद का नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी, तो एसी का मतलब क्या है? अभय चरण, है ना, अभय चरण। इसका अर्थ है कि उनके चरणों में अभय का वास है। अभय चरण का मतलब क्या हुआ? उनके चरणों से आपको अभय प्राप्त हो जाएगा, अभय का वास है। उन्होंने संपूर्ण विश्व में एक ऐसा घर बनाया है जिसमें संपूर्ण विश्व निर्भयता पूर्वक रह सकता है, बिना किसी भय के रह सकता है। प्रभुपाद जी ने जो घर बनाया है तो ये असली घर है इस संसार रूपी जंगल में। आपको पता है जंगल में रहने में और घर में रहने में कितना अंतर है? जंगल में रहने में कितनी सुविधा मिलती है और घर में रहने पर कितनी सुविधा मिलती है? तो प्रभुपाद जी ने ये जो घर बनाया है तो इसमें बहुत सुविधा है जीवन की, निर्भयता पूर्वक आप रह सकते हैं। जंगल में हर सेकेंड भय मिलता रहता है, सोते जाते उठते बैठते खाते पीते हर समय भय मिलता रहता है। आगे श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी ये देखा जा सकता है कि उनके अंदर भय बिल्कुल भी नहीं था। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तथा प्रभुपाद कलकत्ता में थे, उस समय कलकत्ता शहर में वायु यानों के द्वारा बम गिराए जा रहे थे। किस सन की बात है? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। है 1942। तो कलकत्ता शहर में बम गिराए जा रहे थे वायु यानों के द्वारा। सभी लोग घबरा कर अपने अपने घरों में इधर उधर भाग रहे थे। उस समय लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि श्रील प्रभुपाद श्री राधा कृष्ण की पूजा में स्थिरता पूर्वक और निर्भयता पूर्वक बैठे हुए थे। वो पूजा में बैठे मस्ती से पूजा कर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी राधा कृष्ण की पूजा में बैठे हुए हैं। एक अन्य घटना में जब श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे तो अचानक कहीं पास में बम विस्फोट हुआ। जब शिष्य भयभीत हुए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम लोग किस बात का भय करते हो? यदि यहां पर बम विस्फोट होगा तो हम सभी एक साथ श्री कृष्ण के गोलोक धाम में चले जाएंगे, एक साथ सब लोग जाएंगे गोलोक धाम में अगर यहां बम फटा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये है। प्रहलाद महाराज के समक्ष हिरण्यकशिपु तलवार लेकर खड़ा था। किस लिए? गर्दन काटने के लिए हिरण्यकशिपु। परंतु उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके समक्ष प्रहलाद महाराज एक बालक होते हुए भी निर्भय खड़े थे। भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का यह प्रथम परिणाम है कि हृदय के अंदर मृत्यु का भय नहीं रहता। भय से मुक्त होने पर ही कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है, नहीं तो प्रेम की बातें बहुत चलती हैं, कहां प्रेम, कहां प्रेम है? क्योंकि भक्ति के बिना भय से मुक्त नहीं हो सकता, भक्ति के बिना कोई भय से मुक्त नहीं हो सकता, अतः भक्ति के बिना इस संसार में प्रेम संभव नहीं है। प्रेम की बातें जितनी चाहो कर लो, है ना, इस संसार में प्रेम संभव नहीं है। जैसे ही व्यक्ति के समक्ष मृत्यु का भय आता है उसके संसार में सभी संबंध टूट जाते हैं। जैसे मौत का भय आया और सब संबंध टूटे, वो फिर सोचता है ये जाए भाड़ में वो जाए भाड़ में, मुझे अपनी जीव अपनी जिंदगी बचानी है, मैं क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूंगा उसका, चलो हटो मुझे अपनी जिंदगी बचानी है कि नहीं? कहां प्रेम हो सकता है जब मृत्यु का भय है। यहां तक कि देवतागण भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं है, फिर उनकी भक्ति से कोई मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है? देवताओं की भक्ति से कैसे? यहां तक शिव जी भी जो ना भयभीत होते हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, ये भी भयभीत होते हैं, है ना। भगवान के चक्र से शिव जी भी भयभीत हुए, है ना। फिर भुवनेश्वर में जो है उन्होंने शरण ली चक्र के भय से मुक्त होने के लिए, है ना। और दुर्वासा के पीछे भी जब भगवान का चक्र लग गया था तो शिव जी ने भी कहा कि अरे भैया जाए यहां से, क्यों हमारे ऊपर संकट डाल रहा है, तेरे ऊपर तो संकट आया है, तो मेरे ऊपर भी संकट डाल रहा है, जाए यहां से। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ जाओ यहां मत आओ। खैर शिव जी ने तो कहा कि भगवान के शरण में लो, भगवान की शरण लो क्योंकि भगवान का चक्र है। तो सब भयभीत हैं। तो फिर जब देवतागण भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं है, फिर उनकी भक्ति से कोई मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है? श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा है, जिसमें वर्णन है कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न करते हैं। क्यों? अम्बरीश महाराज का क्या अपराध था? उन्होंने तो अपराध से बचने के लिए बहुत विचार किया कि किसी प्रकार से अपराध ना हो, दुर्वासा मुनि का भी अपराध ना हो और एकादशी का भी अपराध ना हो। निर्जला एकादशी की थी तो विचार किया कि अगर पारण नहीं करेंगे, यानी व्रत नहीं तोड़ेंगे, ये पारण का समय है, तो एकादशी का अपराध होगा, भगवान विष्णु का अपराध होगा। और अगर व्रत तोड़ेंगे, कुछ भोजन करेंगे, तो दुर्वासा मुनि का अपराध होगा, क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं, उनको बिना खिलाए कैसे खाऊं, है ना। तो बहुत सोच विचार कर थोड़ा सा पानी पी लिया बेचारे ने कि दुर्वासा मुनि का भी अपराध ना हो, भगवान का भी अपराध ना हो। और दुर्वासा मुनि इस बात को जान करके कि उन्होंने पानी पिया है मुझे बिना खिलाए, अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूं इसका मजा, और मार डालने के लिए अपने जटाओं का एक लठ उखाड़ करके जमीन में पटका कृत्या उत्पन्न कर दी अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए, है ना। उस समय क्या हुआ, कृत्या अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए आगे बढ़ती है। वो कृत्या जानते कैसी थी, बिल्कुल अग्नि के समान उसका पूरा शरीर जल रहा था, और हाथ में तलवार लिए अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए आगे बढ़ी। बहुत भयानक कृत्या थी, परंतु अम्बरीश महाराज निर्भयता पूर्वक तथा विनम्रता पूर्वक वहां खड़े रहे, उनको डर भी नहीं है और साथ साथ उनको घमंड